ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव
हरि हरि ओ
हरि ओ हरि हरि ओ हरि 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 ओ हरि ओ हरि हरि ओ हरि ओ
भयनाशन दुर्मति हरण
भयनाशन दुर्मति हरण
कलि में हरि को नाम
कलि में हरि को नाम
निश दिन नानक जो जपे
निश दिन नानक जो जपे
सफल हुवई सब काम
सफल हुवई सब काम
हरि ओ हरि ओ अगर बैठे बैठे थके हैं तो अपनी जगह पे खड़े होके बैठ जाएं और ये सार सत्संग भगवान श्री कृष्ण के अनुभव के वचनों को सुनते ही आप अपना रहस्यमय प्रसाद पा सकते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं और ये गीता सभी के हित की बात करती है, चाहे गुलाम हुसैन में से गामा पहलवान बने गामा हो, चाहे रईहाना तैयब हो, चाहे अहमद हो, चाहे महात्मा थोरो हो, एमर्सन हो, चाहे मार्क्स ट्वेन हो, चाहे H.M. मुलिन हो, चाहे तिलक हो, चाहे गांधी जी हो, गीता सभी का सर्वांगी विकास करने की सुंदर सीख देती है। भगवान कहते हैं शक्नोति हैव यः सोढुं प्रकाश शरीरः विमोक्षणात् काम क्रोध भव वेगम स युक्त स सुखी नर। सुख सब चाहते हैं लेकिन इन दो चीजों से जो बचने के लिए सूझबूझ का उपयोग करते वे सदा सुखी रह पाते, बाकी के लोग सुख के लिए छटपटाते छटपटाते दुख ही बढ़ाकर अंत में परेशानियों की जाल में फंसे रहते। इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले ही मौत के पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ होता है वही नर योगी है और वही सुखी है। बात बिल्कुल सरल साधारण ढंग से कही है, लेकिन सारे पूजा स्थलों का, बंदगियों का, कथाओं का, भजनों का, सभी का सार कह दिया भगवान ने। शक्नोति हैव सोढुम प्रकाश शरीरम विमोक्षणात् काम क्रोध भव वेगम स युक्त स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही नर योगी है और वही सुखी है। जिन्होंने गोधरा में निर्दोष लोगों यात्रियों के डिब्बे को आग जल में झोंक दिया वो क्रोध में आके तो झोंका होगा, अगर वो थोड़ा सा रुक जाते तो हमारे हजारों लाखों भारतवासियों पर उसका बद्दा असर क्यों पड़ता। बस ये काम और क्रोध ये दो जो वैरी हैं, घर में चोर आ जाए ना तभी भी कुछ बच जाता है, बाढ़ का पानी आ जाए ना तभी भी कुछ सामान तो रह जाता है, लेकिन आग आए तो सफाया कर देती है। एक महीने की बंदगियां, एक महीने की पूजाएं, एक महीने की प्रेयरें करो, लेकिन एक बार गहराई से क्रोध करा तो उसका जो सत्व बना वो नाश हो जाता है। वो नर सुखी है कि जो काम और क्रोध के वेग को जीवन की शाम होने के पहले संभाल सकता है, नियंत्रण कर लेता है। काम और क्रोध को अपनी ताकत नहीं है, जीव अपनी महिमा भूल जाता है और उसको सम्मति देता है, इसलिए उसका शिकार हो जाता है और अनर्थ कर लेता है। खुद तो अनर्थ कर लेता है लेकिन उसके अनर्थ का शिकार, अब देखो पूरा हिंदुस्तान अनर्थ का शिकार हो रहा है, कितने करोड़ों रुपए का व्यवसाय बिगड़ता, कितना कितना हानि होती, कौन सी जाति का, कौन से पंथ का, किस व्यक्ति का कसूर है, ये हम तो नहीं कहते लेकिन है तो इन दो हरामियों का ही कसूर, काम और क्रोध का ही कसूर। काम विकार आ जाए तभी भी आदमी की शांति भंग हो जाती है और वो बेईमान हो जाता है, कुछ न कुछ कपट कर लेता। क्रोध आ जाए तो एकदम क्रूरता के साथ की वृत्ति में न जाने क्या कर डालता है। वो आदमी सुखी है जो काम और क्रोध के वेग को रोकने में सफल हो गया है। काम किसी वस्तु व्यक्ति के विषय की कामना ने जोर पकड़ा, अब वो कामना ने जोर पकड़ा, उस कामना को विवेक से नियंत्रित करे, धर्म के अनुकूल है तो उपयोग करे, नहीं तो फिर उसके पीछे न मरे। क्रोध आया थोड़ा धैर्य रखे तो इन्हें उद्वेग आवेशों से बच जाता आदमी, नहीं तो उन्हीं बातों का विचार करते करते न जाने कहां कहां अनर्थ पहुंचा देते आदमी को। ये विवेक मनुष्यों में होता है कि काम आया है, ये क्रोध आया है। पशुओं में विवेक सुषुप्त होता है, उनका विवेक सोया होता है। देवताओं में विवेक दबा रहता है क्योंकि उनकी भोग योनि है, और जो भोग में और संग्रह में लगे हैं उनका विवेक भी दबा रहता है। फिर भी मनुष्य शरीर में तो कभी कभी संग्रह वाले लोभी को भी लगता है कि आखिर कितना इकट्ठा करो, कोई सार नहीं है, चलो दान पुण्य करो। क्रोधी को भी लगता है हाँ क्रोध करने में ठीक नहीं है, फिर भी भोग में और संग्रह में जो लगे उनका भी विवेक दबा रहता है। कभी कभी मौका मिलता है उभरने का, तो उस विवेक उभरे हुए विवेक को महत्व दे दे। जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो विवेक उभरा, क्योंकि शमशान में ज्ञान और वैराग्य, विवेक वैराग्य रहता है, तो ये मृत्यु हो गई ऐसे अपने भी हो जाएगी तो कितना कुछ करो, समय इसी में गंवाओगे क्या, क्या ले जाएंगे, कौन ले गया कि अपन ले जाएंगे, तो जैसे विवेक उभरता है उस विवेक का महत्व दे। पति पत्नी का संसार व्यवहार सेक्स का कुछ सुख भोगने के बाद विवेक जगता है कि कोई सार नहीं, उस विवेक का आदर करे और व्रत रख ले कि आज से 8 हफ्ते तक हम संसार व्यवहार नहीं करेंगे, 6 हफ्ते तक नहीं अपनी कमर तोड़ेंगे, 10 हफ्ता तक कंट्रोल करेंगे, तो शरीर सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा। नहीं तो थोड़ी सीजन बदली और कमर तोड़ प्रोग्राम भी हुए, पाचन तंत्र कमजोर हो गया, शरीर ऐसा हो गया वैसा हो गया, दवाइयां खाते रहे और जल्दी मौत को बुलाया। तो ये काम और क्रोध के जो दो वेग हैं, अच्छे अच्छे भले भले बुद्धिमानों को भी पटक देते हैं, निस्तेज कर देते हैं, निराश कर देते हैं, हताश कर देते हैं, हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, लाचार बना देते हैं। अगर इन दो शत्रुओं को सत्ता देने वाला जीव स्वयं सावधान हो जाए तो ये दोनों पाले हुए कुत्ते की नाई उपयोगी हो जाते। जैसे पाला हुआ कुत्ता आपके संपदा की रखवाली करता है, ऐसे ही ये काम और क्रोध आपके आत्म संपदा की रखवाली करने वाले पाले हुए कुत्ते भी आप इनको बना सकते हो। जब उपयोग करना हुआ तो आप बन गए लोभी लालची कामी, अंदर से कुछ नहीं। जैसे श्री रामचंद्र जी को विभीषण ने कहा कि आप तो ऐसे शांत भाव से तीर मारते रहेंगे तो ये मरने वाला नहीं, इसका तो नाभि में है, अर्थात रावण मतलब काम और क्रोध का केंद्र है ये नाभि केंद्र, ये वहीं इसको बाण मारो। राम जी आप तो हृदय रस में बने आराम से, कहीं बेचारे को लग न जाए, ऐसे शांतात्मा होकर युद्ध करोगे तो कैसे होगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा क्रोध आगच्छ, आवाहन करता हूँ मेरा, तो मैं तेरा आवाहन करता हूँ। राम जी ने क्रोध का आवाहन करके उपयोग किया, ऐसे ही आप काम का उपयोग कर सकते, क्रोध का उपयोग कर सकते। अभी क्या है कि काम आपको थपड़े मार के कामी बना देता है, क्रोध आपको अंधा बनाकर न करने का करवा देता है, बाद में आप पछताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले इन दो वेगों को रोकने में सफल होता है वो सुखी है, वह योगी है, उसका जीवन सफल हो गया। इन वेगों को सहन कर ले, इन वेगों के धक्के में बहे नहीं। जो रोक सकता है तो रोकने के उपाय जान ले। जैसे सूर्य के किरण शरीर को चारों तरफ सूर्य स्नान से स्वस्थ रखना चाहिए, पहले 5-7 मिनट फिर 8-10-12-15 मिनट तक सुबह के सूर्य के किरण बड़ा फायदा करते हैं। यहाँ तक कि डायबिटीज के बीमारों को भी सूर्य के किरण से लाभ होता है, इंसुलिन लेने वालों को भी लाभ होता है, और इंसुलिन बिना की डायबिटीज है उनको भी सूर्य के किरणों से विटामिन डी मिलता है, बहुत फायदा होता है। जैसे सूर्य के किरणों से विटामिन डी मिलता है और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, पाचन तंत्र ठीक होता है। सूरज उदय होते ही आपकी जठरा प्रदीप होती है और सूर्य अस्त होते आपकी जठरा ढलने लगती है। तो जो रात को देर से खाते हैं वे खाने का मजा नहीं लेते, पचा नहीं सकते उतना, फिर वो फैटी हो जाते। रात को देर से खाना, फिर दही खाना तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, धौर वही चावर है। जिसको मूर्ख बनाना हो उसको रात को दही खिलाओ, पनीर की भाजी दो, जिसको जल्दी मरना हो उसको मावा खिलाओ, पनीर की सब्जी खिलाओ, रात को देर से भोजन कराओ, बस। तो अभी भले उसको पता नहीं चले 2-4 साल में, हकीम का यार सदा बीमार मिलेगा, सारे तंत्र कमजोर हो जाएंगे। आज जिसको तंदुरुस्त रखना हो उसको सत्संग में ले जाओ, और वो भी बापू जैसे सत्संग में ले जाओ कि भगवान की कथा के साथ स्वास्थ्य की कथा, बापू की सत्संग में ले जाओ। देखो मोनोपोली है अपनी। अभी आप घर बैठे ये बात सुन लेना कि ठंडे जो पेय पीते हो वो अभी तो अच्छे लगते हैं, मजा देते हैं, लेकिन हानि से भरे हुए हैं। इन पेयों से अपने को बचाओ। हाँ, उसकी गन्ने का रस है, उसमें पानी डाल के उबाल के थोड़ा पानी सूख जाए, बाकी का वो बच्चों को पिलाओ पियो, अच्छा है। नींबू की शिकंजी अच्छी है, दही का लस्सी मठा उठा नहीं। हाँ, दही को बिलो बिलो के ऐसा करो, मक्खन अलग हो जाए, बाद में उसमें जीरा सिंधव आदि डाल के थोड़ा बहुत ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसी भ्रांति में पड़े कि चलो गर्मी है तो जरा दही ठंडा है। अरे दही का तासीर गर्म होता है, जाड़ों में दही खाना चाहिए, गर्मियों में दही खाया जाता है कहीं? जिसको पथरी की बीमारी करनी और गैस की बीमारी करनी उसको पालक की सब्जी रात को खिलाओ, और जिसको विटामिन खूब देना है उनको पालक की सब्जी दिन को खिलाओ, जय राम जी की। तो पालक तो वही कि वही, रात को खाते तो हानि होती है, दिन को खाते तो फायदा होता है। भोजन भी देर रात को खाते तो हानि होती है, और सूरज के धूप में जो जो शरीर मजबूत पकता है उस समय खाते तो फायदा होता है। सुबह सादा सौदा खाना चाहिए, सुपाच्य, और दोपहर को जम के खाना चाहिए, और शाम को सूर्यास्त होने के पहले ही कई लोग खा लेते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं तो जितना हो सके रात्रि का भोजन जल्दी से जल्दी कर ले, रात को जितनी देर उतना मंदाग्नि, और उतने फिर भारीपन, सुबह शरीर जकड़ा पकड़ा, एक तो मुंबई का भेज और दूसरा रात को खाए देर से तो फिर डबल रोटी छाप। ये तो ठीक है राजस्थान से आए हो, अभी एक आध पीढ़ी जरा ऐसा चलेगा फिर ये जनरेशन खोखला होता चला जाएगा। जितना तुम्हारा बाप दादा का शरीर मजबूत था उतना तुम्हारा नहीं, और जितना तुम्हारा है उतना तुम्हारे बच्चों का नहीं है। न शरीर मजबूत है न मन मजबूत है, खिन्न हो जाते हैं। तो खिन्नता के दूसरे भी कारण हैं, तो ये काम और क्रोध से ही तो खिन्नता आती है। काम से वीर नाश हो जाता है तो जोश कम, ताकत गुस्सा ज्यादा, आक्रोध से रस नाश हो जाता है तो आदमी खिन्न हो जाता है। तो जो इन काम को और क्रोध को, दो वैरियों को खाली संभाल ले, नियंत्रित कर ले, तो बस सारा जगत उसका मित्र हो जाए। तो मनुष्य के अंदर ये विवेक रहता है, लेकिन काम और क्रोध और संग्रह और भोग के कारण विवेक थोड़ा सा दबा रहता है, फिर भी मौका पाकर उभरता रहता है। पशुओं का विवेक तो उनके दबाई दबा रहता है, उनके भरण पोषण तक का ही विवेक की एक किरण काम देती है कि ये खाना ये नहीं खाना, ये प्रॉब्लम आया तो भाग जाओ, फिर थोड़ी देर के बाद वो देखा तो वहाँ लपक पड़ो, खाने ये खाना है, फिर इतना विवेक नहीं कि पिंजरा है मैं फंस मरूंगा, बिल्ली आएगी, ए नहीं चूहा फंसे तो फंसे लेकिन गया पिंजरे में, मनुष्य तो देखेगा और दूर तक का विवेक है। तो मनुष्य का विवेक साधारण व्यक्तियों के, साधारण जीव जंतु पशु पक्षियों की अपेक्षा विशेष जगह है। देवताओं की अपेक्षा भी मनुष्यों में विवेक ज्यादा जागृत है, क्योंकि देवता भोग योनि है। अब मनुष्य भोग योनि नहीं है, मनुष्य यहाँ कर्म योनि है। पाप करते हैं तो नरक भोगना पड़ता है नारकीय जीवों को, और पुण्य की अधिकता से स्वर्ग भोग योनि है। लेकिन मनुष्य जीवन, अच्छा पाप भोग कर नरक भोग कर पाश्वी योनि भी भोग योनि है, और पुण्य का फल देवता भी भोग योनि है। तो मनुष्य उन योनियों का अंश है, भोग भोगते हुए नए कर्म करने की स्वतंत्रता है, इसलिए उसके अंदर विवेक की प्रधानता है। फिर भी विवेक की प्रधानता वाला मनुष्य भी अगर भोग भोगने में ही लग जाता है, निगुरा है, सत्संग नहीं है, तो उसका विवेक भी पशु की नाई दबा रहता है। उस बेवकूफ को पता ही नहीं कि अमावस्या है, पूनम है, अथवा ये शराब नहीं पीना चाहिए, मासिक धर्म में पत्नी है या कुटुंब की व्यक्ति है तो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो विवेक उनका दबा रहता है। तो फिर वायड़े जैसे हो जाते, और विदेशों में ऐसे वायड़े बहुत मिलते हैं, जहाँ ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग नहीं है वहाँ की प्रजा में पिशाच जैसा खान पान और अशांति आचरण हुए, पशु जैसे हुए। बड़े बड़े सुखी और धनाढ्य देशों में भी अशांति यहाँ से अधिक ज्यादा। हाँ, उनको मीडिया का उपयोग करने की अटकल है, उनके पोल तो आप जानते नहीं, और आपकी थोड़ी बहुत 19-20 बात होती तो वर्ल्ड फेमस करके हिंदुस्तान को बदनाम करने का षड्यंत्र वो करते। बाकी तो ये हाल है कि भैंस कहती कि ए हे गाय देख ले इसकी तो पूंछ काली है, अरे खाला तू चुप बैठ, तू पूरी की पूरी खाली है, काली है रांड, तेरे को पता नहीं। ऐसे ही विदेशी मीडिया हमारे भारत को कई देशों में नीचा दिखाते, ये हड़ताल हो गई, ये हो गया, ये आग हो गई, ये वहां जितना होता है उसका तो बयान भगवान जाने, कितनी अशांति है, कितना दुख है, क्योंकि विवेक अति दबा हुआ है, अति दबा हुआ है। फिर भी वहां कुछ पुण्य आत्माओं का विवेक जगता है, भारत में आते अथवा वहां भी नियम ले लेते हैं, मांस आदि छोड़ लेते हैं, संयम का थोड़ा नियम ले लेते हैं। तो मनुष्य जीवन में विवेक को जगने का, विवेक की जागृति का अवसर कुदरत ने दिया है, वो भी बालक अवस्था में प्रकृति का प्रभाव रहता है। बालक 5 साल का होता है तो प्रकृति अपना कुछ परसेंटेज अपना प्रभाव संकेलित कर लेते हैं और उसको मुख, ऐसे करते करते उम्र बढ़ते बढ़ते 14 वर्ष का बच्चा होते ही जब तीसरे केंद्र में उसकी स्थिति होती है तो प्रकृति उसको छूट दे देती है। उसका विवेक कितना भी वो उपयोग करे, कितना भी ऊंचा जाए, तो यही कारण है कि प्रकृति ने आंधी और तूफान किए तो मनुष्य ने घर बना लिए। 50 वर्ष पहले चिड़िया जो घोंसला बनाती थी वही आज बनाती है, 100 वर्ष पहले जैसे चूहे और जीव जंतु जीते थे जंगलों में अभी वैसे ही जी रहे, लेकिन मनुष्य ने देखा तो कितना विवेक है, उसने क्या क्या आविष्कार किए, सारा विश्व को एक पिंड, विश्व में कहीं भी जाना हो, कहीं भी बात करना हो तो देखो कितना विवेक है कि ओ दूरभाष खोज लिया, दूरदर्शन खोज लिया, ये खोज लिया, वो खोज लिया, और इतने विवेक की छूट है कि सृष्टिकर्ता को खोजने वाले खोज लेते हैं और उसको अपना नन्ना मुन्ना बनाकर लाड प्यार भी कर देते हैं। कितना स्वतंत्र मनुष्य, बिन सत्संग विवेक न हो वही। ये सत्संग हमारे विवेक को 4 चांद लगाता है। स्वतंत्रता प्रकृति ने दी, विवेक के द्वार पर से प्रकृति हट गई, अब वो विवेक के द्वार पर तुम भोग को थप्पा करके द्वार बंद कर दो, संग्रह का थप्पा करके द्वार बंद कर दो तो तुम्हारी मर्जी, अथवा तो उस विवेक के द्वार को खोलने के लिए सत्संग का हाथ बढ़ाओ, नियम संयम का हाथ बढ़ाओ और विवेक का द्वार विशाल हो जाए। जितना विवेक का द्वार आपका विशाल हो जाएगा उतना ये वेग आपको नचा नहीं सकेंगे। एकनाथ महाराज पैठाण में रहते थे, एकनाथ महाराज सत्संग करते, उनका सेवक उद्धव महाराज गोदावरी में स्नान करके आते हैं, रास्ते से कोई पठान महाराज को देखता है, काफर नहाकर आया है, पान की पिचकारी मार दी, क्रोध का प्रसंग आ गया, महाराज का विवेक जगाए, फिर नहाने गए, फिर उसने मार दी, फिर नहाया, फिर मारी, फिर नहाया, वो भी अड़ गया था। सुबह 5 बजे रोज काफर यहां से नहाकर जाता, इसको लोग पूजते हैं, आज इसकी खबर लूंगा। और एकनाथ महाराज भी इतना विवेक को आगे रखे कि शाम होते होते 108वीं बार गोता मारा, उन्होंने हद हो गई, हिंदू के सहिष्णुता की भी हद हो गई और पठान की नालायकता का भी हद हो गया, यवन की नालायक, आखिर नालायक की झुकी और पठान बोले महाराज इतनी बार मैंने पिचकारी मारी, पान खा खा के मैं थक गया, तुम नाना के नहीं थके? बोले आज मेरे ठाकुर जी की ऐसी मर्जी होगी तो तुम्हारी कृपा से 108वीं बार मैंने नहाया। पठान फुट फुट कर रो पड़ा कि मुझे माफ करो, ये करो वो करो, इतना उनका विवेक, क्रोध पर रहे नियंत्रण। अब वो तो एकनाथ महाराज थे, आप तो गृहस्थी हो, आप ऐसे करोगे तो लोग आपको जीने भी तो नहीं देंगे, जयराम जी की। तो एकनाथ महाराज अपनी जगह पर है, आपका लेना देना उठना बैठना अपनी जगह पर है, नहीं तो लोग तो आपको नोच डालेंगे। तो गृहस्थ का धर्म अलग होता है, साधक का धर्म अलग होता है, सेना का धर्म अलग होता है, पुलिस का धर्म अलग होता है, जयराम जी की। अभी पुलिस सत्संगी की नाई बैठी है फिर भी अपना धर्म बजा रही, जयराम जी की, चारों तरफ यूं यूं यूं, कोई सेवा में कमी नहीं होने पाए। अगर तुम चारों तरफ यूं यूं करो तो मैं तुमको डांट दूं, और वो नहीं झांके तो मैं उनको डांटूं, वो अगर नहीं झांके तो मैं बोलूं क्या मुफ्त का पगार खा रहे हो, और तुम अगर झांके तो तुमको मैं डांट दूं क्या सत्संग सुनने आए हो कि मजाक करने आए, इधर उधर क्या झांकते हो। तो हैं तो दोनों मेरे श्रोता हैं, तो दोनों मेरे प्रति दोनों को मान, लेकिन इनका अपना कर्तव्य सेवा में चौकन्ने रहना, और आपका अपना कर्तव्य इस समय कि एकाकार होकर सुनना। अभी आपका श्रोता का धर्म, तो अपने अपने धर्म के अनुसार जो आदमी काम करता है वो शोभायमान होता है। अपना कर्म धर्म है, संचालन का धर्म है, जिम्मेदारी है, उसमें अगर लापरवाही की तो ऐसे संचालक को हमने कल बुरी तरह डांट दिया था। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, अपने अपने कर्तव्य में चिवट तत्पर था। आपका विवेक, आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ेगी। हूं शू करू, ये तो बायला बेड़ा छे, क्या करें, इसने ये कराओ। जो अपनी गलती के ऊपर सफाई देता है उसका सुधरना मुश्किल है, उसका विवेक जगना मुश्किल है, उसका विवेक होना, तीक्ष्ण विवेक होना मुश्किल है। आजकल के बच्चों का ये दुर्भाग्य कि माँ टोकती है भलाई के लिए, बाप टोकता है और बच्चे रुठ जाते, चिढ़ जाते। माँ बाप को कुछ कहना है तो डर डर के कहते, संभल संभल के कहते। फिर भी आजकल की पढ़ाई में या वातावरण में ऐसी कुछ उद्विग्न आता है कि वो बच्चे बस सफाई मारेंगे या तो मुंह चढ़ा के चल देंगे, तो फिर उनमें आगे चलकर समाज में जूझने की ताकत भी तो नहीं रहती। कुछ अच्छे बच्चे हैं, कहीं गलती नहीं है, फिर भी माँ बाप ने डांट दिया तो चुपचाप सह लेते, फिर समय पाकर माँ बाप को बताते कि आपने तो मेरे को कहा था लेकिन ऐसा था। अरे बेटे, तो माँ बाप का विशेष प्यार मिलता। एक बेटे को उसके भाई ने कहा कि मैं माँ को कह दूंगा और माँ तेरे को डांटेगी, मार पड़ेगी। बोले मारेगी तो मारेगी, डांटेगी तो डांटेगी, अगर मेरी गलती होगी तो मारेगी, तो मेरे भलाई के लिए मारेगी, इसमें तू मेरे को क्या डराता है। अगर मेरी गलती नहीं होगी और फिर भी तू ऐसा वैसा बोलेगा तो मैं बोल दूंगा कि माँ ऐसा नहीं ऐसा है। ये तो भय उसको होता है जो कामना के अधीन होता है, और काम उसी को सताता है कि जो बेवकूफी के अधीन होता है। लेकिन जो माता पिता शास्त्र और विवेक के अधीन है उनको न काम दबोचता है, न क्रोध दबोचता है, न भय नोचता है, न शोक नोचता है, वो तो आत्मा रामी होकर तर जाते आराम से। जीवन जितना आपको अभी दुखी और जटिल दिख रहा है वास्तव में ऐसा जीवन नहीं है। दुख और जटिलता तो अविवेक से बड़ी है, अविचार से बड़ी है। न खाने का खा लिया देखा जाएगा, लस्सी पी ली, पकोड़े खा लिए, फलाने खा लिए, फिर बीमारी हुई। अब बीमारी हुई तो उपवास करें, थोड़ा सा पेट साफ रहे, शरीर साफ रहे, सूर्य के किरण ले, नहीं इंजेक्शन भोंकवाए। अब इंजेक्शन भोंकवाए तो आपके शरीर में जो कफ से या कच्चे रस से जो बुखार बुखार था, रस को पकाने के लिए, उस बुखार को दबाने के लिए इंजेक्शन मार दिया, आपके अंदर का जो कफ है वो वहाँ सूख गया, आपको आराम मिल गया। लेकिन समय पाकर वो 2, 5, 10 साल, 15 साल, 25 साल में कैंसर की बीमारी होगी। कनू भाई करके एक अपना साधक है, तो उसको मैंने कहा कि तुम मोटा हो गया, जरा ध्यान रखा कर, हिंदुस्तान आ जा। आऊँगा आऊँगा आऊँगा, फिर एक बार इधर दर्द हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ तो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो बोले प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो हमारे से संपर्क नहीं कर सका, एडमिट हो गया। ऑपरेशन करते 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 उस नस में से जो कफ और वायु भर गया था, अभी दर्द हुआ था। अब संत कृपा चूर्ण खा लेता, जरा गुनगुना पानी पी लेता, थोड़ा उपवास कर लेता, एक दो डकार आ जाता, एक दो बमबाजी कर लेता तो आराम हो जाता। बमबाजी तो समझते ना, चने की दाल खाने के बाद जो बमबाजी होती है शरीर की, तो आराम हो जाता। कफ जम गया और वायु उधर गया तो जाने का रास्ता नहीं मिला, तो दर्द हो गया। वो काटा काटी करके उस नस में से कफ निकालना था। ओ तो ऑपरेशन करते, ओ तो दर्द इधर है कि इधर है, वो भूल गया डॉक्टर, तो ये लंबा चौड़ा उधर तो दिखा नहीं, तो फिर उसको सी के इधर ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन तो दो तरफ ऑपरेशन, 4.5 घंटे ऑपरेशन चले, 1 घंटे के इतने $1,000 तो ऑपरेशन वाला लेता, बड़ा डॉक्टर है। ऐसे करते कराते $1,20,000 कुल लगे, ज़्यादा नहीं, 56 लाख रुपए हिंदुस्तान के उसके लग गए। और पेन किलर खा खा कर और नींद आलाने की गोलियां खा खा कर उसे नींद नहीं आती, तंद्रा आती थी। ऐसी हालत हुई कि वो बिस्तर में पड़े पड़े रोता था और मेरे को समाचार आया। मैंने टेलीफोन पे बात की, मैं क्या बेवकूफ है, तू आया नहीं तब अब क्या करूं। मैं क्या आ जा, तो दो आदमियों को लेकर वो जहाज में दो आदमी साथ में लाए उसको और आया और पुष्कर में उसको रखा, थोड़ा वमन करवा दिया, थोड़ा स्टीम बात करा दिया, ये सब पिघल गया। और वो आया था तो विकलांग की लाइन में और बड़े डॉक्टरों ने कहा तुम व्हील चेयर के सिवाय नहीं जी सकते हो, और चलता चलता गया और अभी संभाल रहा है अपना। तो स्वस्थ होने में भी विवेक चाहिए, जरा सा हुआ और काट पाट ये वो, अब जरा सा प्रसूति की पीड़ा हुई ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आजकल तो कल एक पेशेंट आया एम्बुलेंस में लेकर, जरा सा बुखार आया था फिर एडमिट किया और ये किया ये किया। मैं क्या कितना खर्च हुआ, बोले बापूजी 11 लाख रुपया खर्च हो गए, बड़ी अस्पतालें जो यहाँ हैं वहाँ का नाम लिया, हिंदुजा आदि और दूसरी आदि। मैंने कहा ये तो वही, अब हम क्या कहें, ये तो एक दूसरे से कमीशन बंधा रहता है, ब्लड टेस्ट करो तो इतना मिलेगा, फलाना कराओ तो इतना मिला है, पेशेंट को भटका कर पैसे वाले थे इसीलिए तुम्हारी हालत ये हुई है। हमारे वैद्य ने कहा बापू अगर कहते तो मैं ऐसे ही ठीक कर देता हूँ। मैं कहा हाँ वैद्य के पास चले जाओ। तो इसमें भी विवेक चाहिए, स्वस्थ होने में भी विवेक चाहिए, खाने पीने में भी विवेक चाहिए, ऐसे काम और क्रोध आए उस समय विवेक चाहिए। एक वैश्या ने विवेक की शरण ली और महान आत्मा बन गई। एक नाथ महाराज सत्संग करते, पठान का तो चित्त बदला लेकिन पास में एक रास्ते में एक वैश्या का घर था, उसने इस महापुरुष की काम और क्रोध पर विजय देखकर उसमें श्रद्धा हो गई। खोटे काम करती थी, भोगी थी, विवेक दबा था, फिर भी वो विवेक कभी कभी तो जगता है, जैसे लोभी का विवेक कभी कभी लोभ से उबता है, कामी का विवेक जगता है, क्रोधी का विवेक भी कभी कभी जगता है कि मैंने गलत किया। क्योंकि मनुष्य शरीर में विवेक जागने की प्रधानता है तो उसका फायदा लेना चाहिए। पशु बनेंगे तो विवेक तो दबा रहेगा, भोगते हैं देवता बनेंगे तभी भी विवेक दबा रहेगा, निगुरे रहेंगे तभी भी विवेक दबा रहेगा तो, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर में निगुरों का विवेक भी भड़कता है, जगता है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है ईश्वर की, उसका फायदा लेना चाहिए। वो वैश्या एकनाथ जी के सत्संग में आती थी, एकनाथ जी का सत्संग कीर्तन उसके विवेक को थोड़ा 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 कीर्तन के द्वारा जप ध्यान के द्वारा को लगता था कि यहाँ आनंद है। मैं नाचने में कुशल हूँ, गाने में कुशल हूँ, पैसा का नाम कमाने में कुशल हूँ, लेकिन मुझे शांति आनंद तो यहाँ मिलता है। इनके पास धन दौलत सुविधाएं नहीं, इनके भक्तों के पास फिर भी, इनके भक्त जितने सुखी हैं उतने मेरे ग्राहक दुखी हैं। जयराम जी की गणिका को ये तटस्थता हुई कि बाबा के ग्राहक जितने सुखी है उतने ही मेरे ग्राहक दुखी है। क्या ख्याल है, अभी देख ले कोई, मेरे जितने ग्राहक सुखी हैं उतने हैं क्लबों के ग्राहक सुखी नहीं मिलेंगे। जयराम जी की वाइन पीना, ये करना, डांस करना, ये करना, वो ऐसे खोखले खोखले होंगे और रंग रोगन लगा के घूमते होंगे। हम मेरे तो ऐसे ही चंगे लग दे, मेरे ग्राहक तो ऐसे ही चंगे लग दे, कोई रंग रोगन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही चंगे लग दे। वो एकनाथ जी स्नान करके आ रहे थे, अब वो पठान था वो तो थूकता था और ये वैश्या थी, फिर भी थोड़ा विवेक जगा था। महाराज आ रहे हैं, चरणों में प्रणाम किया दूर से, महाराज अगर मैं काबिल नहीं हूं कहने के लेकिन आपकी उदारता का, आपकी दयालुता का, आपकी भक्तवत्सलता का भाव देखकर मैं हिम्मत करती हूँ कि अगर कृपा कर सके तो इस पापिन के घर को आप पावन करें। एकनाथ ने इशारा करा चल, वो ऊपर मेड़े पे था उसका घर, सेकंड फ्लोर पे रहती होगी, वो आगे आगे औधव को तो जचा नहीं कि तो जानी मानी गणिका नर्तकी वैश्या है और महाराज नहा के उठ से आ जा रहे। ये उसने एक सुंदर आसन वासन बिछा रखा था, चारों तरफ कुछ सिंदर विंदर ये वो जो उसकी मति गति थी। एकनाथ जी बैठे और वो उदासी की नहीं, ठकुर ठकुर, मानो एकनाथ जी को वह साक्षात काम क्रोध रहित जो है वो तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, लटका करता ब्रह्म है, बस मधुमय है, सुखमय। महाराज आपके चरणों में मैं अपने आप को अर्पण करती हूँ, महाराज मैं आपको क्या दूं, क्या आपकी कृपा का बयान करूं। सत्पुरुषों में अहो भाव से हृदय का मैल धुल जाता है, अहम धुल जाता है। सत्पुरुष में दोष, सत्पुरुष में दोष दर्शन करने से अपना पुण्य धुल जाता है और सत्पुरुष में अहोभाव करने से अपना पाप धुल जाता है। भगवान कहते हैं अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम। पापी से पापी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, गंदे से गंदा हो, बिल्कुल महा महा गया बिताओ, सारे दुनिया के एकदम हल्के से हल्के कर्म करने वाले उन व्यक्तियों में से भी एकदम अव्वल नंबर का, ऐसे जो अव्वल नंबर अव्वल ग्रेड के बदमाश लोफर क्रिमिनल हो, उसमें भी जो एकदम पहले नंबर का हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर सत्संग की नाव में बैठता है तो तर जाता और निर्दोष बन जाता है। भगवान कहते हैं अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लविन वृजिनम संतरिष। वैशाने एक टक महाराज को निहारते निहारते अपने मन के भावों को जगाया, महाराज इस दासी पर आपकी कृपा हो जाए, मैं लायक तो नहीं हूं लेकिन महाराज भगवान और संतों को हो तो कैसे भी लोग मिलते हैं, वे तारने को तत्पर होते हैं। नाव ये नहीं सोचती कि गरीब है कि अमीर है, पापी कि पुण्यात्मा है, कोई नाव में बैठता है तो तारती है। महाराज आपकी तो वो नाव है, मैं ये मेरा वेश्या का धंधा, आप जानते मैं गणी का हूँ, आप जानते मैं शराबियों के बीच रहती जीती हूँ, आप जानते हो महाराज, लेकिन मुझे आप अपनी शरण। महाराज मैंने आपके सत्संग में सुना था, पिंगला ने एक दिन विवेक किया कि हाय रे मैं कितनी अभागी हूँ, पुरुषों के शरीर से नाक से उनकी हवा में बदबू आती, मुंह से बदबू निकल, उनके अंगों से बदबू निकलती, ये मैंने सुना था। तो मैं अब विवेक करती हूँ तो जिनको ग्राहक मानकर मैं उनके साथ क्रीड़ा करती थी, अब मेरे को वो काम सुख नहीं मिलता, अब तो मैं अपनी नालायकी को रोती हूँ महाराज। जब से सत्संग सुना पिंगला वैशा ने विवेक किया, वो विवेक की बात से मैं देखती हूँ तो ये काम तो क्या है, ये तो अपने को निचोना है महाराज, अब मुझ पर आप कृपा करो। ऐसे करते करते वो बस महाराज के चरणों पर दूर से पड़ गई, महाराज की निगाहें पड़ी कृपामयी। महाराज ने उसको गुरु मंत्र दिया और वैश्या ऐसी तरी के भाई पैठण में और भक्ताणी बन गई, कहाँ तो बुरा धंधा करने वाली उल्टा और कहाँ सत्संग में काम और क्रोध को जीतने की। पिंगला रानी की कथा सुनकर वो धर्मात्मा और महात्मा पद को प्राप्त हुई। 10 साल तक गुरु मंत्र को जपते जपते उसके शरीर में जो कुकर्म के परमाणु थे वे बदल गए और भक्ति के दिव्य परमाणु दिव्य ओरा उभरी और अंत में वो भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त हुई। एकनाथ महाराज ने न जाने ऐसे क्या 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 कैसे कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया, पूरा विवेक जगाए। तो आप तो तरते औरों को तारते, सतरती लोकांतार्यति सतृप्तो भवति स अमृतो भवति। एकनाथ महाराज आखिरी जीवन शांति से संवत्सर 1655-56 आराम से भगवत भजन शांति लोक संग्रह लोक भीड़ बाहर से कम थोड़ा बहुत सत्संग आदि किया। फागुन मास में उन 1600 संवत 1656 में निर्वाण पाए, उससे कुछ वर्ष समय पहले से वे निवृत्त होते चले जा रहे थे। उन्होंने भागवत एकनाथी भागवत लिखना शुरू किया, पूरी नहीं लिखी थी। एकनाथी भागवत के पंच अध्याय पर व्याख्या की और वो उनके शिष्य पांच अध्याय लेकर यात्रा करते थे और मणिकर्णिका घाट पर एकनाथी भागवत के पांच अध्यायों का पाठ करने लगे। मराठी में अनुवाद है, संस्कृत का मराठी में बोले। काशी के पंडित ने देखा कि ये मराठा का बच्चा ये भागवत क्या बोलता है रे, है है मराठा तिकड़े तिकड़े वाला इधर ये क्या है? बोले भागवत है तो मराठी में भागवत कैसे, किसने बनाया? बोले वो महाराष्ट्र में पैठण है। हाँ बोले पैठण है तो क्या है? बोले एकनाथ महाराज भगवान के महापुरुष हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या किया। भागवत पर तुम्हारा मराठा लोग व्याख्या करेगा? काशी में रहने वाले विद्वान पंडित बाँ पुकार जाते और मराठा इकड़म तिकड़म वाला भागवत पे करेगा कह रहे इकड़े तिकड़े वाले। बोले हाँ हमारे गुरुजी ने क्या। बोले ठहरो अब तुम्हारे गुरुजी की तुम्हारी खबर लेते हैं। वो दस पांच जो थे अकड़ू तकड़ू हो गए अपने सन्यासी विद्वान के पास कि महाराज हो कोई महाराष्ट्र के आए हैं कोई पैठान पैठान के भगत और वो मणिकर्णिका घाट पर श्रीमद् भागवत का पंच अध्याय का पाठ कर और उसका मराठी अर्थ कर रही है और व्याख्या कर रहे हैं। बुलाया उनको, सन्यासी बड़ा विद्वान था, उसकी धाक थी उधर, बहुत लोग उसको मानते थे। बोले ये क्या, किसने हिम्मत किया? काशी के विद्वान जिसके ऊपर व्याख्या करने में दस बार विचार करे और काशी के लोग हमसे सम्मति लेते और तुम्हारे पैठान के बाबा क्या समझते? कह रहे मोला ये हरगिज हम चलने नहीं देंगे। अपने दो आदमियों को भेजा उस सन्यासी ने, पैठान में जाओ एकनाथ महाराज को वारंट करके ले आओ। उस समय धर्म का बोलबाला था, काशी के पंडितों का बोलबाला था। एकनाथ महाराज बोले अच्छा है, तुम्हें तो काशी जाने का ही विचार था और काशी से संत का आमंत्रण आया है, वाह भगवान। हालांकि महाराज को तो क्रोध आना चाहिए, वाह भगवान माजा पांडुरंगा माजा विठला माजा अंतर्यामी तुमची लीला अपरंपार आहे। औधव को और दूसरों किसी को अपना पैठान का सत्संग का काम भार सौंप गए संचालकों को। ऐसे संचालक थे कि महाराज की गैरहाजिरी में वो संभाल लेते। तो औधव ने वो महाराज जी का काम संभाल लिया। महाराज जी गए तो उन्होंने अपने दस विद्वान साधुओं को महाराज जी के जहाँ धर्मशाला में ठहरे दस विद्वान साधु भेजे। 300 विद्वान तैयार करके रखे कि इस एकनाथ के बच्चे को पता चलना चाहिए कि काशी विद्वानों का गढ़ है और यहाँ की सम्मति लिए बिना, जैसे केंद्र की सम्मति लिए बिना तुम अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ेगा, एक दो आदमी जीत जाओ दस जीत जाओ राज तो पार्टी करेगी के? इसी प्रकार वहाँ पार्टीबाजी थी। ये अकेला एक सीट पे कैसे महाराष्ट्र में प्रकाश डाल? वो दस दस सन्यासियों ने उनके साथ एकनाथ जी के साथ शास्त्रार्थ की ठानी। 300 रिजर्व हैं, 10 आए हैं अभी, बाकी के और पड़े हैं। एक आदमी के साथ 10 आदमी शास्त्रार्थ करे, ऐसे 300 आदमियों से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा एकनाथ महाराज को। और वो 300 आदमियों को जब हरा दे तब तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा कि तुम विद्वान हो और तुम टीका लिख सकते हो। लेकिन इस बाबा के पास क्या चीज थी कि ये दो चीज थी, काम और क्रोध को जेब में रखते थे बस, नहीं तो भयंकर अपमान की जगह थी, भयंकर युद्ध की जगह थी। भक्त यहां के पैठान के भक्त और काशी के पंडे दे धमाधम होने वाला था। और महाराष्ट्र के लोग मुगलों से भिड़ सकते हैं लेकिन काशी के भक्तों और संतों से महाराष्ट्र के लोग नहीं भिड़ सकते, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग भी तो भक्त है, भक्त भक्त से थोड़े लड़ेगा।
तो हाथ जोड़ेगा बापू जी बोलेगा। तो एकनाथ जी महाराज को तो पहले ही दो बच्चे थे वो जेब में रखते थे। 300 पंड वहां के होते हैं ना, गैंग होती ना, तो 300 लोग थे और ये एकनाथ महाराज और दो तीन को साथ में। उन्होंने चैलेंज किया, ललकारा, दसाए शास्त्रार्थ का। उन्होंने बोला मैं शास्त्रार्थ तो क्या जानू, मैं तो अनपढ़ आदमी, ये तो मेरे विट्ठल ने बुलवाया तो मैं लिखा है, मलम्मा इतना ही, मैं क्या जानू। एकनाथ की नम्रता और सहज मस्ती से वो 10 इतने प्रभावित हो गए कि जाके 290 को बोले कि ये तो भगवान का आदमी है, ये तो ऐसे हैं कि वही बोलते कि मैंने तो लिखा ही नहीं है, मैं अगर लिख सकता तो मैं पहले लिखता, मैं हट गया तो मेरे विट्ठल ने लिखवाया, बाप जैसी भी कृपा करो भाई मेरा कुछ भी नहीं। बोले एकदम इतना बढ़िया भागवत लिखा, मेरा कुछ नहीं, कैसे बोलता है, अभी डर के मारे बोलता है, चलो मिलते। चलो मिलते, जो मिलने को आए तो एकनाथ जी का काम और क्रोध जेब में था तो बाकी तो शांति आनंद। तो जो आदमी काम और क्रोध को जेब में रखता है उस आदमी के दर्शन करने से सामने का आदमी में अगर कुछ भी थोड़ा विवेक है तो वो प्रभावित होगा होगा होगा। चाहे लाइव प्रोग्राम सुने तभी भी उधर भी बैठे बैठे यूं करना पड़ेगा आपको, जयराम जी के हाँ बापू जी सच्ची बात है, बापू जी अपने हैं अच्छे हैं। कई मुसलमान भक्त मेरे अभी भी सुन रहे हैं यहाँ भी बम्बई में भी, इस सत्संग में भी होंगे, घरों में भी होंगे। आपके हृदय में काम और क्रोध का आवेग नहीं है तो आप केवल हिंदुओं के ही नहीं, केवल मुसलमानों के ही नहीं, केवल ईसाइयों के नहीं, जहां जहां मानवता का पवित्र विवेक है वहां वहां आपके लिए आदर होगा होगा और होगा। आपकी वाणी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उनको लाभ होगा, उनको संतोष मिलता है, शांति मिलती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, विवेक जगा था, नवाबी ठाट से रहते थे, फिर भी देखा कि दिन दिन बीत रहा है, आयुष्य नष्ट हो रही है, ये स्विमिंग पूल ये वो, आखिर क्या। तो खोजे फकीरों के हस्तलिखित लिपियां पढ़ी ये वो, उसमें से एक ग्रंथ रचने की इच्छा हुई। फिर भी अंदर में खटक था कि कोई मिल जाए, पीर फकीर पहुंचा दे भोपार, विल विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां रहा। आप उचित चाह करो, उसको लगे रहो तो आपकी वो चाह पूरी होगी। आप अनुचित चाह करते हो तो उसमें आप अपने को नीचो देते हो और फिर अपने को अयोग्य मानते हो कि भाई हमको थोड़ी भगवान मिल सकते, हमको थोड़ी शांति मिल सकती, कि तुमको भगवान नहीं मिल सकते, शांति नहीं मिल सकती, तो मतलब भगवान का अनुभव कोई गलत है। तुमने कभी सुना है कि अनपढ़ गडरिया को हेडमास्टर बनाया जाए, योग्य व्यक्ति को ही मास्टर की नौकरी दी जाती है, हेडमास्टर बनाया जाता है? अनपढ़ गडरिया को कोई हेडमास्टर बनाता है क्या? योग्य व्यक्ति को ही अपनी जगह पे दिया जाता है। ऐसे ही 84 लाख योनियों में विवेक जगाने के योग्य आप थे और विवेक से भगवत शांति पाने के आप काबिल, भगवान ने काबिल मानकर तो आपको मनुष्य शरीर दिया और फिर श्रद्धा दी, फिर योग्यता भगवान के तरफ से है और आप अपना गला घोंटे कि मैं योग्य नहीं हूं, योग्य नहीं, तो फिर क्या करे भगवान। जैसे किसी को प्रिंसिपल बनाया तो गडरिया तो नहीं है, कुछ जानता है तभी तो प्रिंसिपल बनाया, ऐसे ही मनुष्य बनाया फिर श्रद्धा दी तो भगवान कुछ तो जानते हैं। हाँ, भगवान आपको जानते तो भगवान जैसा जानते ऐसा तो आप अपने को कम से कम मानिए। आपड़ू काम नहीं, पलायनवादी था ना, आपड़ू काम नहीं, निगेटिव सोचकर अपने पैरों पे कुहाड़ा क्यों मारते। एक वैश्या जैसी बाई तर सकती है तो तुम्हारे तरने में तुम्हारे बाप का क्या जाए, क्यों अपने पैर पे कुहाड़ा मारो। और जो खा के लड्डू और लड़ाई झगड़ा करके धर्म के नाम पे हीरो बनना चाहते, ऐसे लोग भी एकनाथ के संपर्क में आकर भगत बन गए।
पादरी आवर पूना में।
अरे क्या तुम्हारा विट्ठल है, क्या तुम्हारा गणपति है, हाथी के सिर वाले को भगवान मानते, तुम पागल हो ऐसा हो वैसा। वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वाक्य का जाल बिछाता था और गरीब गुरबे को कुछ देता। किसी मराठा ने कहा देखो पादरी आवर, तुम हिंदू धर्म की निंदा करते हो और अपना धर्मांतरण कराने का जो भी चलाते हो, प्लीज माफ करना, लेकिन कम से कम तुम एकनाथी भागवत तो पढ़ो, और नहीं तो ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ो, तुकाराम के अभंग पढ़ो, फिर तुम खूब गाली देना हिंदू धर्म को। मैं पादरी आवर्ण को शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि वो हठी जिद्दी नहीं था, उसने ये ग्रंथ पढ़े और ग्रंथ पढ़े और तुरंत रिजाइन पेपर पर रिजाइन लिखा कि मुझे भेजने में आया था कि इनको धर्मांतरित करें ताकि सुखी हो, लेकिन इतनी असुविधा में भी इनको जो सुख मिलता है ये हिंदू धर्म की महानता है। ईसाई मिशनरियों को उचित है कि वे भी हिंदू धर्म की महानता को मनुष्य तक पहुंचाए, और मैं अपने $1,00,000 धर्म संशोधन मंडल जो यहां महाराष्ट्र में है उनको अर्पण करता हूं, ₹8,00,000 हिंदुस्तान के, $8 का $1 था उस जमाने। पादरी आवर्ण ने हिंदू धर्म की शरण ले ली एकनाथी भागवत पढ़ने से, ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ने से। तो दूसरे पादरियों को भी एकनाथी भागवत पढ़ना चाहिए, ज्ञानेश्वरी गीता पढ़नी चाहिए, तुकाराम के अभंग पढ़ने चाहिए, तुलसीदास का रामायण समझना चाहिए। बाद में हिंदुओं को गाली देनी हो तो दे दो, कोई बात नहीं, हिंदू धर्म बेकार और हमारा धर्म अच्छा है कह दे तो कह देना, बाद में पहले पढ़ो तो सही बेटे। जयराम जी के तो आदमी उठ के बैठा था सन्यासी, जाओ जरा देखो ये 10 वो एक नाथ महाराज के गीत गा रहे, जाओ जरा उसकी महाराज की जरा बराबर खबर लो। 300 के 300 आए बाय चढ़ा के, महाराष्ट्र से आए महाराज है, हंदो में काना राजा मरुभूमि में मरुभूमि में महाराज डॉक्टर साहब का तो दुकान चलेगा, लेकिन यहाँ काशी है। एकनाथ महाराज बोले महाराज बिल्कुल आप सत्य कहते, तो काशी तो विद्वानों का घर है, तो फिर तुमने हिम्मत कैसे की भागवत पर लेखनी उठाने। अरे बस विठल की दया हुई, शिव महाराज की नम्रता और सहजता, भड़काने वाली बात करते रहे, मखोल उड़ाने वाले उड़ाते रहे, लेकिन महाराज ने तो काम और क्रोध को तो जेब में रखा था, मेरी वाहवाही हो इसलिए तो भागवत लिखा ही नहीं है, और ये मेरा अपमान कर रहे हैं ऐसा अहंकार है नहीं। अपमान हो रहा है तो शरीर का हो रहा है, इसमें से तो जो निकलता है उस सब मसाले का हम अपमान कर रहे हैं। क्या लीट निकलती तो के वाह रे वाह मेरी लीट ऐसा करते हो क्या, थूक निकलती तो उसकी पूजा करते हो क्या, सुबह जो शरीर से निकलता क्या उसको मान देते हो क्या, जो मवाद निकलता है या ऑपरेशन से या जो निकलता उसको मान देते हो क्या, ये तो मान योग्य तो है ही नहीं। और अपमान दूसरा किसका होता है, आत्मा का तो अपमान कर नहीं सकते, और इसका तो अपमान तुम भी दिन रात कर रहे हो। पसीना पहुंचते तो भी फेंकते, यूं निकालते तो भी पोछते, यूं निकालते तो भी फेंकते, क्या कोई आदर करते हो अपने शरीर से जो मसाला निकलता है। ये तो ना समझी है, मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा अपमान हो गया, अब मैं बदला लूंगा, यही तो मनुष्य की कमजोरी है। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। ये काम और क्रोध ने तो सारे संसार को अपने जाल में बांध के नचा रखा है। कोई विरले हैं जो इसके पोल जान लेते, इनको अपनी स्वतंत्र ताकत नहीं है काम को, कामना हुई कि ये बढ़िया चीज है, ये बढ़िया लड़का है लड़की है, ये बढ़िया चीज है, फिर बढ़िया चीज है बढ़ियापन दिया, फिर बार बार उसका चिंतन किया, आपने उसको सपोर्ट दिया, आप उसके पराधीन होते हो। शराबी बोलता है यार ये दारू में मजा आएगा, दारू में अगर मजा होता तो सत्संगी को क्यों नहीं आता, ऐसा करने में अगर सचमुच मजा होता तो दूसरे को भी आना चाहिए। मजा तो तेरी वासना, तू उभारता है और फिर वहीं फंस मरता है, जैसे कुत्ता है ना हड्डी चबा चबा के मेहरों में घा पड़ता और फिर समझता इसी से मजा आ रहा है। ऐसे ही अपनी ऊर्जा 10-5 दिन की इकट्ठी हुई अरवे तेरे बिना भी आई लव यू सत्यानाश दोनों के गाल बैठ गए। क्या हुआ लव के नाम पे क्या किया, एक दूसरे की कमर तोड़ने का प्रोग्राम करा काला मुंह के, और क्या करी बहादुरी की। लेकिन देखा देखी काम बढ़े, देखा देखी राम का रस बढ़ता है। आजकल जैसे फिल्मों में देखते हैं ऐसे ही उत्तेजनाएं होती है। आज तो कंपटीशन लगाते कौन लंबा समय एक दूसरे के होठ की थूक चाटता है अखबारों में आ रहे, तो आने वाले जनरेशन की तो तबाही हो रही है। अखबार में एक बार फोटो भी आया था मेरे पास कि लंबा समय कौन एक दूसरे की थूक चूसता है। अब ये कोई अक्ल की बात है? नारायण हरि नारायण। मरे हुए बैक्टीरिया है, बदबू है, लेकिन बुद्धि मारी जाती है, विवेक दबा गया है। और अखबारों में और प्रचार में ऐसा कर रहे हैं तो मानवता का तो सत्यानाश हो रहा है। लेकिन एकनाथ महाराज तो मस्त, वो 290 जो थे वो एकनाथ जी का काम और क्रोध वश था, तो एकनाथ जी का व्यवहार देखकर और एकनाथ जी की उपस्थिति देखकर वो एकनाथ जी के भगत हो गए। ताली बजाओ क्या सिपाही देखते। महाराष्ट्र के पैठान, छोटे से पैठान के एकनाथ महाराज और काशी में 300 विद्वान तैयार थे महाराज को हराने के लिए, लेकिन महाराज ने ये 2 शत्रुओं को अपने जेब में रख दिया था। वो महाराज के भक्त बन गए और गए कि गुरुजी वो महाराज तो ऐसे हैं कि बस वो तो बिल्कुल भगवत स्वरूप है, वो तो ब्रह्म सुख को पाए हुए, काम और क्रोध तो उनके चित्त में मानो है ही नहीं, जब चाहे तो बुलाए नहीं तो भगा दे, वो तो स्वतंत्र राम स्वरूप है महाराज, वो तो कृष्ण रूप है, विठल रूप है महाराज। ओ हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण,
भयनाशन दुर्मति हरण,
कलि में हरि को नाम,
कलि में
निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। खूब प्यार से हम हरियो हरि ओ। न हम वसामि वैकुंठे,
हम वसामि वैकुंठे,
योगिनां हृदय न वै,
योगिनां हृदय न वै,
मदभक्ता यत्र गायन्ति,
मदभक्ता यत्र गायन्ति,
तत्र तिष्ठामि नारद,
तत्र तिष्ठामि नारद।
हरि ओ हरि ओ। नारद, जहां सूर्य वहां प्रकाश, नारद जहां चंदा वहां चांदनी, जहां कुसुम के फूल वहां सुगंध, नारद जहां संत और भक्त वहां सत्संग, नारद जहां सत्संग वहां काम क्रोध रहित, मुझ आत्मदेव का सुख छल छल चमके, चम चम चमके, छल छल चमके, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद, मैं साकेत लोक में ना मिलूं, वैकुंठ में ना मिलूं, गोलोक में ना मिलूं,
तो तू मुझे मेरे प्यारे संत और सत्संगियों के बीच अवश्य मिल सकता है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हरि ओ हरि ओ। हरि हरि ओ हरि ओ। शक्नोति हैव यः सोढुं, शक्नोति हैव यः सोढुं, प्रकाश शरीर विमोक्षणात्,
प्रकाश शरीर विमोक्षणात्,
काम क्रोधात् भव वेगम्,
काम क्रोधात् भव वेगम्।
घर बैठे जो सुन रहे हो ना, वो भी आप बोलना है। ये भगवान के श्री मुख से जो वचन निकले वही आप उच्चारण करना, पुण्य लाभ होता है। शक्नोति हैव यः सोढुं,
शक्नोति हैव यः सोढुं,
प्रकाश शरीर विमोक्षणात्,
प्रकाश शरीर विमोक्षणात्,
काम क्रोध भव वेगम्,
काम क्रोध भव वेगम्,
संयुक्त स सुखी नरः,
संयुक्त स सुखी नरः।
घर बैठे लोग सुन लेना, इसका अर्थ लिख सको तो लिखो, नहीं तो कागज पेन पर न लिखो तो हृदय की गहराई में उतरने देना। भगवान कहते इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले मौका है, आज तक भले कुछ भी नहीं हुआ, अभी शरीर तो नहीं छूटा, शरीर छूटने के पहले कर लो। लेकिन ऐसा मत सोचना कि शरीर छूटने के पहले मतलब मरते समय करेंगे, अभी से लगोगे तो मरते समय तक कर पाओगे, ये बहुत ऊंचा काम है। इसीलिए अभी से आप सावधान हो जाओ, और इससे बहुत फायदा होगा आपका घर का व्यवहार में, समाज में, बिजनेस में बहुत बहुत अच्छा होगा। क्रोध आए आप सावधान हो जाना कि आया है, अब इसके वश हूं कि इसको वश करूं, काम आया, आप थोड़े सावधान हो जाओ, साक्षी हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, तो आज आप इसका उपयोग करना लग जाओ। आज तक तो इसने आपको नचा, लेकिन आज के बाद इसका उपयोग करना आप सीख जाओ, घर के झगड़े भक्ति में बदल जाएंगे, चिंताएं छू होने लगेगी, वरी लेस, ईगो लेस, टेंशन लेस, तनाव लेस हो जाओ। इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है, काम का वेग आया, आप काम ही न बनिए, जरा रोकिए अपने मन को। बोले महाराज सेक्स के विचार आते कैसे रोके, क्या करें? देखो बेटा, बिस्तर पर बैठ गए, भगवान का एक मंत्र है, 21 बार जप करके बाद में सो काम विकार के तरंग शांत होंगे, शांति बढ़ेगी। अपनी माँ का नाम तकिए पर अपनी उंगली से लिखना है, स्याही नहीं, पेन नहीं, केवल अपनी उंगली, ये पहली उंगली तर्जनी। अपनी माँ का नाम तकिए पर लिख कर बाद में सो, रात्रि के सपन दोष, हस्त मैथुन और गंदे विचारों पर नियंत्रण होगा। मिश्री और आंवले का मिश्रण और तीसरी बूटी का मिश्रण है, थोड़ा फाकने से भी काम विकार में थोड़ा नियंत्रण होगा, पानी पड़ने की बीमारी पे नियंत्रण होगा। चाय कॉफी आदि इस धातु को पतला करती और हानि करती, इससे थोड़ा बचो। इस सीजन में थोड़ा दूध भी कम कर लो, दूध पीने वाले 10-5 दिन दूध पीने की जगह पर अंगूर खाओ, अंगूर का बड़ा फायदा है। इस सीजन में अंगूर खाओ, लेकिन अच्छी तरह से धो धा के, रगड़ रगड़ के, उन पर मक्खियां भी बैठती है और जंतुनाशक दवाएं भी छिटकी जाती है। इसलिए अंगूर को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के 2-4 पानियों में फिर अंगूर खाना चालू रखो। मैं दूध पीता था, मेरी आदत और क्या मेरा खुराक था सुबह जलपान दूध का, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया, उम्र हो गई, दूध नहीं वायु करेगा। तो आप लोग इन दिनों में बोतलों का दूध ये वो उससे परहेज करके अंगूर का उपयोग करो।